بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے میانمار میں مسلمانوں کی حالت زار، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، میانمار میں ایک بار پھر مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری انتہا پسند بدھسٹوں کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں مسلمان مارے جا چکے ہیں، جبکہ 900 سے زائد شہروں میں ان کے گھر اور دکانیں نظر آتش کر دی گئیں اور مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ خود حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تشدد کی تازہ لہر میں 40 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، لیکن آزاد ذرائع بتاتے ہیں کہ اگرچہ پولیس اور فوج کی سختی کے باعث ان علاقوں میں جانا جہاں حملے ہو رہے ہیں اور جانی اور مالی نقصانات کی صحیح اطلاع حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن فسادات کی وسعت اور حملوں کی شدت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جانی اور مالی نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں جن کا حکومت نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ میانمار میں مسلمانوں کے خلاف حملوں میں حکومتی اداروں اور فوج کی جانبداری بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس میں دو رائے نہیں کہ میانمار کی حکومت ایک منظم منصوبے کے تحت ملک سے مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتی ہے۔ عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے 2012 کے موسم گرما میں میانماری مسلمانوں کے قتل عام کے موقع پر جو مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اس روایت کو نسلی تصفیے اور قتل عام کی تازہ لہر کے موقع پر بھی باقی رکھا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بلکہ افسوسناک اسلامی برادری کی خاموشی ہے۔ میانمار میں پوری مسلم قوم کا صفایا کیا جا رہا ہے اور 57 اسلامی ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ نہ کہیں سے کوئی آواز ہے، نہ احتجاج ہے، نہ مذمتی بیان ہے، اور نہ ہی میانمار کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کا اعلان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میانمار کے مسلمان تو درکنار انسان بھی نہیں ہیں۔ کہیں جنگلوں کی کٹائی اور جانوروں کے مارے جانے کی خبر آتی ہے تو پوری دنیا سراپا احتجاج بن جاتی ہے، لیکن میانمار میں روہنگیا مسلمان مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور دنیا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ میانمار کے مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے۔ سینکڑوں سال سے روہنگیا مسلمان میانمار میں موجود ہیں۔ میانمار میں ان کی موجودگی کی تاریخ 1000 سال سے زائد عرصے پر مشتمل ہے، تو ان کو شہریت سے کس بنیاد پر محروم کیا گیا؟ ان کی نیشنلٹی کس قانون کے تحت کینسل کی گئی؟ کیا اقوام متحدہ کے منشور میں اقوام کے بنیادی ترین حق شہریت کے دفاع کی کوئی شک نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر اقوام متحدہ نے میانمار کے مسلمانوں کے تئیں اپنا فریضہ کیوں پورا نہیں کیا؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں میانمار کے مسلمانوں کے نسلی تصفیے پر کیوں خاموش ہیں؟ انسانی حقوق کے دفاع کے دعوے دار مغربی ممالک میانمار کی حکومت کی سرزنش کے بجائے اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں کیوں مصروف ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلم دنیا نے میانمار کے مسلمانوں کی اپنی اخلاقی حمایت سے بھی انہیں کیوں محروم رکھا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسلام آباد اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار تنویر حسین صاحب کو۔ ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے اس مباحثے میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز اسلامی اسکالر، سیاستداں اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مباحثے میں شامل کیا جائے گا ایک اور اسلامی اسکالر ڈاکٹر ظفر الاسلام خاں صاحب کو۔ لیکن پہلے اس حوالے سے ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
म्यांमार में नस्ली फसादात का सिलसिला जारी है और इंतहा पसंद बुद्धिस्टों ने एक बार फिर मुसलमानों पर हमले तेज कर दिए हैं। मैकतिला के इलाके में फूटने वाले फसादात दारुल हुकूमत रंगून तक पहुंच गए हैं और 3 दर्जन से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। मैकतिला समेत कई इलाकों में इंतहा पसंद बुद्धिस्टों ने मस्जिद, दुकानों और घरों को आग लगाई और मुसलमानों पर हमले किए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमलावर छुरियों और चाकुओं से मुसल्ला है। हुकूमत की जानिब से कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इंतहा पसंदों के हमले बंद नहीं हुए हैं। हुकूमत ने कुछ इलाकों में फौज भी तैनात की है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि हुकूमत म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना पॉलिसी अपना रखी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकारी मशीनरी मुसलमानों तक इमदाद पहुंचाने में रुकावटें डाल रही है, जिसकी वजह से इंसानी अलमिया रूनुमा होने का खदशा पैदा हो गया है। इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि म्यांमार की हुकूमत मुसलमानों को बचाने के बजाय उनके खिलाफ होने वाले हमलों को नजरअंदाज कर रही है और बाज़ औक़ात तो सिक्योरिटी फोर्सेज खुद भी इन हमलों में इंतहा पसंदों का साथ दे रही हैं। बर्मी मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान बहुत पुरानी है, ताहम 28 मई 2012 को ये सब हदें उबूर कर गई जब चंद बुद्धिस्टों ने रोहिंग्या मुसलमान औरतों से कीमती अशिया लूटकर उन्हें जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में उन्हें कत्ल कर दिया। इस वाकये ने मुसलमानों को इश्तियाल दिला दिया, जिससे मुसलमानों और बुत परस्तों के दरमियान नए फसादात ने जन्म लिया। मुसलमानों की तादाद कम होने के बायस बुत परस्तों ने मुसलमानों का कत्ल आम शुरू कर दिया। फसादात रोकने के लिए आने वाली फौज और पुलिस ने भी इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्ल करना शुरू किया। मुसलमानों के इस कत्लेआम पर जहां आलमी ताकतें खामोश हैं, वहीं इस्लामी ममालिक ने भी चुप का रोजा रख लिया है। आलमी बरादरी के इसी कमजोर रद्द अमल और बेहिसी की वजह से म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का नंगा नाच वक्ती तौर पर थम जाने के बाद दोबारा शुरू हो गया है और मुसलमानों के खून की होली खेली जा रही है। आन सान सू की को सारी दुनिया जमहूरियत नवाज मुजाहिद रहनुमा के तौर पर जानती है और सन 1991 में उन्हें अमन का नोबल इनाम भी मिल चुका है। रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के बारे में उनका ख्याल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से फरमा दिया कि मुझे इससे कोई गरज नहीं। हुकूमत म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को अपना शहरी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्हें बांग्लादेशी तारिकीन वतन कहा जाता है। 11 लाख की कुल मुस्लिम आबादी में से तकरीबन 8 लाख रोहिंग्या मुसलमान बर्मा के इलाके अराकान में रहते हैं। ये मुसलमान 1824 से भी पहले से इस इलाके में मौजूद हैं, ताहम कुछ बर्मी तारीखदान, जिनमें कांडा यूनिवर्सिटी के एचिन भी शामिल है, इस बात से इत्तेफाक नहीं करते और उनका कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान 1950 की दहाई में बांग्लादेश से हिजरत करके बर्मा के इलाके अराकान में आबाद हुए। इसी तरह मारूफ रोहिंग्या तारीखदान खलील उर रहमान लिखते हैं कि रोहिंग्या अरबी जबान के लफ्ज रहमा से निकला है, जिसके माना रहम के हैं। इसके बारे में वो मजीद लिखते हैं कि 8वीं सदी ईस्वी में एक अरब बहरी बेड़ा रामरी जजीरे के पास फंस गया, जिसमें अरब ताजिर सवार थे। ये जजीरा अराकान के इलाके में वाक़ है। उस वक्त से इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं। बहरहाल तारीखदानों की अक्सरियत इस बात पर इत्तफाक रखती है कि ये मुसलमान 1824 से पहले से इस इलाके में आबाद हैं। बिनावरी हुकूमत म्यांमार का इन मुसलमानों के सिलसिले में मौजूदा रवैया किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त अक्वामे मुत्तहिदा जैसी आलमी तंजीमों और OIC और अरब लीग जैसी मुस्लिम तंजीमों का खास तौर पर यह फरीजा है कि म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के हक में आवाज उठाएं और न सिर्फ आवाज उठाएं बल्कि अमली इकदामात अंजाम देकर बेसहारा मुस्लिम अकलियत की हिफाजत करें, जो पूरी तरह इंतहा पसंदों के रहमो करम पर छोड़ दी गई है।
नाज़रीन, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज़िया निगार तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तनवीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
तनवीर हुसैन साहब, म्यांमार के मुसलमानों की हकीकत क्या है? हुकूमत दावा करती है कि वो गैर मुल्की हैं, तारिकीन वतन हैं, बांग्लादेशी हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना है, और मुअर्रिखीन का कहना यह है कि कई सौ साल से वो यहाँ पर मुकीम है और बास तारीखों में तो ये बताया गया है कि 8वीं सदी ईस्वी से के अवाइल से वो यहाँ पर मौजूद हैं। हकीकत क्या है?
देखें जी, जिस तरह रिपोर्ट में बताया गया और इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूं कि ये अराकान जो है ये 1784 तक आज़ाद एक रियासत के तौर पर था जो मुसलमानों की थी। और इस पे जो बुद्धों ने 1785 में इस पे कब्जा कर लिया था और इसको बर्मा का एक सूबा बना दिया गया था। इनकी अपनी, मुसलमानों की अपनी एक अलग रियासत थी, आज़ाद थे। लेकिन दूसरी जंग अजीम में जब इन्होंने अराकान के जो मुसलमान थे इन्होंने बर्तानिया का साथ दिया, जबकि बुद्ध जो थे इन्होंने जापान का साथ दिया। तो आज़ादी के बाद ये बुद्धों ने इस पे कब्ज़ा कर लिया था और उस वक्त से इनका जो रवैया है मुसलमानों के खिलाफ एक मानदाना है, एक दुश्मनी पर मबनी है। तो 1942 में और 43 में भी वहाँ पे पहली दफ़ा ये उनके फसादात हुए, फिर 1950 में हुए, फिर 1962 और 82 के दरमियान भी इनके साथ जो है बड़ी ज्यादती होती रही और यहाँ तक कि इन लोगों ने इन हज का करने का भी मौका इनको नहीं दिया गया। तो ये लोग वहाँ के शुरू से रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाज़त देता है? बैन अल-अक़वामी कानून के तहत जब कोई भी शहरी किसी मुल्क में रह रहा हो, उसका बैकग्राउंड कितना पुराना हो, थोड़ा हो या नया हो, रियासत की जिम्मेदारी पड़ती है कि उसके जान और माल का तहफ़ किया जाए। वहाँ पे 50 साल तक माजरत चाहूँगा फौज का कंट्रोल ला और फौज ही उस मुल्क की पे काबिज रही है। लेकिन हम देखते हैं कि अब भी अगर 2 साल अगरचे पहले वहाँ की फौज ने इकतदार जो है सिविल गवर्नमेंट वहाँ पे तश्कील दी है और जिसमें 25% जो है हिस्सा फौज ने अपना रखा हुआ है, आज भी फौज वहाँ की करता धरता है और ये शुरू से फौज की सरपरस्ती में ये सारा कुछ वहाँ होता रहा है। और उनकी ये कोशिश है कि वहाँ जो 6 करोड़ की तकरीबन उनकी आबादी है उसमें ये 8 लाख जो से 11 लाख के करीब जो मुसलमान हैं और 6 से 7% भी बताए जाते हैं, उनको किसी सूरत ही बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके पस मंज़र में इनका बेसिकली वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए और इसकी आड़ में एक नस्ली तौर पे भी और मजहबी हवाले से भी उनके साथ एक जुल्म सितम का सिलसिला शुरू कर रखा है और ये कोशिश की जा रही है कि ये मुसलमान जो हैं उनका उनको माशी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी और उनको हर हवाले से इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि ये यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हो सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हुसैन साहब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबता बरकरार हुआ है बर्रे सग़ीर के एक मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब से। ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
खान साहब, म्यांमार के मुसलमान हुकूमत दावा करती है कि ये तारिकीन वतन हैं, गैर मुल्की हैं। ये तारीख क्या बताती है, ये म्यांमारी हैं या गैर मुल्की हैं?
असली म्यांमार तो एक नया लफ्ज है, असली ये बर्मा उसका असल नाम है उसका
जी।
ये असली बर्मी बाशिंदे हैं और इनको ये कानून का एक गलत इस्तेमाल करके उनको गैर मुल्की बताया गया है। उनको 1962 में ये कानून बनाया गया कि जो आदमी 1832 से पहले अपनी यहाँ पर वजूद साबित नहीं कर सकता वो बर्मी नहीं है। यानी सिर्फ ये मुसलमानों के लिए है और लोगों के लिए नहीं है। अगर ये कानून हर एक के लिए नाफिज किया जाए तो मेरा ख्याल है बर्मा पूरा खाली हो जाएगा, वहाँ कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो कि 1832 में साबित कर सके। इसलिए उस जमाने में कागजात, उस जमाने में इस किस्म की दस्तावेजें वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो ये सिर्फ मुसलमानों को वहाँ से बेदखल करने के लिए और उनको वहाँ से निकालने के लिए है और बिलफैल वहाँ से इस वक्त मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं तो 1 मिलियन मुसलमान, 10 लाख मुसलमान निकल चुके हैं। तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तान में है, 2.5 लाख तकरीबन सऊदी अरब में, मैं खुद उन लोगों कुछ लोगों से मिल चुका हूँ सऊदी अरब में, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4-5 लाख जो बांग्लादेश में है, कुछ थाईलैंड में है, कुछ मलेशिया में है। तो उनका सारा मकसद यह है कि वो जरखेज और बहुत ही उम्दा इलाका, साहली इलाका है जो जिसको के पहले अकियाब कहते थे, अब उसका नाम बदल दिया है उनको अरकान अकियाब, उसका दार सल्तनत था, बहुत बड़ी रियासत थी, मुसलमान रियासत थी, तकरीबन 700-800 साल तक रियासत मुसलमान रही है। ये तो मुसलमान होना तो कोई जुर्म नहीं है, ये लोग बर्मा के हैं, बर्मी ही हैं ये लोग। उनको उनके इलाके से निकालने की पूरी कोशिश हो रही है और ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं है। आज ये होता है कि आप किसी मुल्क में 5 साल रह लें तो आपको वहाँ की नेशनलिटी मिलने का हक हो जाता है और ये लोग 5 साल नहीं बल्कि 800-900 साल, उनकी तारीख बिल्कुल वाजे है कि वो वहाँ के रहते आए हैं और वहीं के बाशिंदे हैं, वहाँ पर उन्होंने हुकूमत भी की है और आज हुकूमत नहीं उनकी है। तो बर्मा में जो फौजी, बल्कि फौजी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो वहाँ की जो दूसरी जो सेकुलर अपने आप को बोलते हैं, जिसमें कि जिनकी लीडर ओंग सांग सूची हैं, वो भी जो है उन्होंने इन लोगों की कतई ताइद नहीं की है, और अगर कभी ताइद में बोलती हैं तो बहुत ही गोलमोल अल्फाज बोलती हैं जिससे वाजे नहीं होता कि वो इनके बारे में क्या चाहती हैं। ये दरहकीकत मैं कहना चाहूँगा कि न सिर्फ दुनिया बल्कि आलम इस्लाम की नाकामी इसमें है कि वो उसने बर्मा के ऊपर इतना जोर नहीं डाला, उस पर इतना दबाव नहीं डाला। दुनिया में बहुत ऐसे इदारे हैं, अक्वाम मुत्तहदा है, उसके अलावा दूसरे ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, फिर खुद इक्तसादी और सियासी जो ताल्लुकात हैं, इन सब को इतना ज़्यादा कर्टेल कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए कि बर्मा को महसूस हो कि वो दुनिया में अलग थलग रह गया है। इस वक्त तकरीबन 58 ममालिक हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर ये एक मौकफ ले लें तो बर्मा की मजाल नहीं है कि अपनी एक छोटी सी अकलियत जो इस वक्त तकरीबन मैं समझता हूँ 8-9 लाख से ज्यादा लोग वहाँ नहीं बचे होंगे, बाकी तकरीबन उतने ही बाहर जा चुके हैं, तो उन पर ये जुल्म जो रवा रखा है ये रवा नहीं रह पाएगा। लेकिन हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि आलम इस्लाम को ये सब चीज़ें नजर नहीं आती हैं, और अगर नजर आती हैं तो एक छोटे से खित्ते में कुछ चीज़ें नजर आती हैं और उसके बाहर उन्हें कुछ नजर नहीं आता।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा। इंसान का जो जो उसके इंसानी हकूक हासिल हैं हर इंसान को, उनमें एक इंतहाई बुनियादी हक हक शहरियत भी है। क्या इस हक शहरियत के दिफा के लिए अक्वाम मुत्तहदा का कोई कानून, उसके मंशूर की कोई शिक नहीं पाई जाती है?
देखिए जी, बुनियादी हकूक तो एक मुसलमान हकीकत है पूरी दुनिया में, और दुनिया के हर मुल्क के कानून में वो उसका तहफ़ किया गया है। उस हर मुल्क ने अपने अपने कानून और आइन के मुताबिक उनको तहफ़ दिया हुआ है। ये इंसान का बुनियादी हक है, फितरी हक इसको भी हम कहते हैं, कि जो जहाँ भी कहीं रहेगा उसको ज़िंदा रहने का हक है। उसको बिला तफरीक मज़हब, नस्ल, रंग, कौम, उसका ये बुनियादी हक है। बहसियत इंसान, ये उसकी उसका हक है। और कोई भी हुकूमत हो, चाहे दुश्मन की हुकूमत हो या अपनी हुकूमत हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके तहफ़ फराहम करे। आज भी आप देखें कि पूरी दुनिया में महाजर मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क मौजूद हैं, और वहाँ पे दूसरे मुल्कों के शहरी हैं। सऊदी अरब में देखें, ईरान में देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात में देखें, वहाँ मुसलमानों के अलावा गैर मुल्की भी वहाँ रह रहे हैं, उनको तमाम हकूक और उनको तमाम जो उनके फितरी हकूक हैं उनका तहफ़ है, उनकी ज़िंदगियों महफूज है, उनको पढ़ने का हक है, उनको तालीम का हक है, उनको रोज़गार के मौक़े हैं, उनको कारोबार का मौक़े हैं। बात यह है कि ये जो बैनुल अक़वामी तौर पर एक यूनाइटेड नेशन मौजूद है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन ममालिक में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वहाँ के हालात का जायज़ा ले। अगर लीबिया में थोड़ी देर के लिए उनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आती हैं तो रातों रात वो करारदादें पास करके और वो नो फ्लाई जोन करार देकर वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह बहरीन में देखें, इसी तरह दूसरे ममालिक में देखें जहाँ इनका मफाद होता है, ईस्ट तैमूर की बात होती है, वहाँ उनके हकूक के लिए अलग मुल्क बना दिया गया, सूडान को तकसीम कर दिया गया है। लेकिन जहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका रवैया बिल्कुल दोहरा सा नज़र आता है। कश्मीर को आप ले लें, हाल ही में भारत ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया, अदालती कत्ल है और उसको उसकी मैयत वापस नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ें मुसलमानों के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत बयक वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ ये हो रहा है, और इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को अपने ही मसाइल में उलझाकर जो इस्लामी बेदारी की तहरीक चली है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, और इनको अपने मुआशी तौर पर भी और हर हवाले से इनको इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि ये लोग अपनी अपनी ज़ात से बाहर ना सोच सकें। इसी वाले से हम वहाँ की जब बात करते हैं तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं जो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, जो सिविल सोसाइटी है वो कहीं हमें नज़र नहीं आती कि बरतानिया में कहीं मुजाहरा कर रहे हों या वाशिंगटन में वाइट हाउस के सामने कोई मुजाहरा कर रहे हों, कहीं वो सिविल सोसाइटी नज़र नहीं आती कि म्यांमार में जो मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है उसको रोका जाए, पूरी दुनिया की तरफ को उस तरफ मुतवज्जो किया जाए, और वहाँ पे एक डिक्टेटर जो है अपने, अगरचे वो सिविल हुकूमत है लेकिन बिलवास्ता तौर पे आज भी फौज का वहाँ पे कंट्रोल है, और एक बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। तो बात यह है कि ये इंसानी हकूक तमाम दुनिया पे, तमाम महजब कौम की, जमहूरियत पसंदों की, सेकुलर स्टेट्स की, इस्लामी ममालिक की और तमाम ह्यूमन राइट्स जी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि इसका वहाँ पर नफाज कराएँ। और ये देखें, हक जो होता है वो लोग मांगते हैं, दिलवाया जाता है ताकत के जरिए से, कानून के जरिए से उसको तहफ़ दिया जाता है। अब बदकिस्मती ये है कि म्यांमार की हुकूमत जो है वो अभी तक जो है, अगरचे 2 साल हो गए हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आई है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ आज लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल नहीं है। जो मर्जी है कोई 10 बंदे इकट्ठे होकर में कहीं भी मुसलमानों की मस्जिदें तबाह कर देते हैं, आग लगा देते हैं, घरों से निकाल दिए, कत्ल कर दिया जाता है। तो ये सारा जो है एक अनारकी की एक कैफियत है जो उस रियासत के लिए भी एक मसला है, लेकिन आलमी बरादरी जब तक इस पर दबाव नहीं डालेगी वहाँ का कानून जो है पूरी तरह मुतहरक नहीं होगा और ना ही मुसलमानों का वहाँ पर तहफ़ हो सकेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर इस्लाम खान साहब
जी,
जनाब ये म्यांमार की हुकूमत ने जो मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों की नेशनलिटी मनसूख कर दी, उनको शहरियत से महरूम कर दिया, इसकी कानूनी हैसियत क्या है?
इसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। इसकी कानूनी हैसियत यही है कि अगर आप गलत कानून को मान लें तो वो कानून है, अगर ना माने तो कानून नहीं है वो। दरअसल जो है ये आपके जो पहले जो बोलने वाले मोहतरम है उन्होंने फरमाया वो बात दुरुस्त है कि अकवामी बैनुल-अक़वामी जो सोसाइटी है और जो उसके जो नुमाइंदे हैं उन लोगों को आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको खुद आना चाहिए। अगर मुसलमान जो है इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे तो उन लोगों की क्या दिलचस्पी होगी? आप दिलचस्पी लीजिए और फिर देखिए दुनिया वाले लेंगे। उनको तो आना चाहिए, मुझे इसमें कोई शक नहीं, बल्कि वो कुछ बोलते भी रहते हैं। एमनेस्टी है या ह्यूमन राइट्स वॉच है, इन्होंने बोला है, इन्होंने ये हम देखते रहते हैं उसको, लेकिन हमारे लोग कहाँ पे हैं? हमारे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, OIC है, वो कहाँ पे है? अरब लीग कहाँ पर है? और इसी तरह से अलग अलग ममालिक खुद हैं जिनके सबके हर मुल्क का जो है एक एम्बेसी खुली हुई है रंगून के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? वो हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी, सिवाय मैं समझता हूँ तुर्की के वजीर खारजा वहाँ गए थे उस इलाके में और वहाँ जाके रोए हुए थे, वो बात ठीक है, लेकिन उसके आगे तो कुछ भी नजर नहीं आया। जब तक म्यांमार या बर्मा उसका मुकाता नहीं होता, उसका बायकॉट नहीं होता, उसको सबक नहीं सिखाया जाता, वो कभी उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और जगहों पे देखिए, अगर जरा सा कहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटी को होता है तो सारी जो उनकी जो एम्बेसियां हैं यूरोपियन कंट्रीज और पूरे कनाडा और अमेरिका है, सब मुतहरिक हो जाती हैं और फौरन उनके सफीर जा करके एहतजाज दाखिल करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी बात हो जाती है। गुजरात में इतने लोगों को मारा गया, कोई भी मुस्लिम जो है मुल्क मुतहरिक नहीं हुआ। तो ये जो सरदमहरी है ये जिम्मेदार है। जब हम खुद नहीं अपने जख्म को देखेंगे तो दूसरे क्यों देखेंगे? आखिर दूसरे अमेरिका को क्या पड़ी है कि वो उनको नाराज करे, जबकि उसको मालूम है कि म्यांमार के पास पेट्रोल भी मौजूद है और वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पे है और वहाँ पर एक जो एक इंटरनेशनल एक हाईवे बनाया जा रहा है इंडोनेशिया से लेकर के यूरोप तक, वो म्यांमार से गुजरने वाला है। इन सब बातों की वजह से जो मगरबी ताकतें हैं वो म्यांमार को नाराज नहीं करना चाहती हैं वो, और ये वजह है कि वो उसके खिलाफ कोई सख्त मौकफ नहीं अख्तियार करेंगे। हमको लेना है, हमारे जो ममालिक हैं 58 ममालिक जो अपने आप को इस्लामी कहते हैं उनको ये लेना था, उसमें से अगर 10 भी ले लें तब भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक मौकफ एक पैदा होगा जिसके बाद म्यांमार की हुकूमत मजबूर होगी कि वो इन गलत और जालिम कवानीन को ख़त्म करे। मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो है दुनिया में रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा मजलूम कोई भी नहीं है। हम अपने बारे में बात करते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान ये वो, लेकिन हम लोग तो यहाँ बहुत ही यानी इज्जत और बहुत एहतराम के साथ यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब उनको हम देखते हैं उनकी शरीयत ही ख़त्म कर दी गई है, उनको निकाल दिया गया, उनको इस वक्त रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, उनको छोटे छोटे काम करने के लिए फौज को रिश्वत देनी पड़ती है, शादी करना उसके लिए रिश्वत, एक शहर से दूसरे शहर जाना उसके लिए रिश्वत, सब चीज़ के लिए परमिट लेना पड़ता है। तो मालूम होता है कि वो तो दरहकीकत हर हर गाँव एक जेल बना हुआ, हर हर उनकी जो 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 शहर है वो एक जेल बना हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए उनको परमिट चाहिए होता है और बाहर परमिट में काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसके खिलाफ सही बात है कि पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी को उठना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम भी तो अपना कुछ हक अदा करें।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तनवीर हुसैन साहब, जनाब जी, बर्मी मुसलमानों के नस्ली तस्वीर पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी की तौजीह किस तरह की जा सकती है?
देखें जी, मुसलमान मुल्कों में अभी तक आप अगर देखें ना, तो यहाँ बादशाहत मौजूद है, शहनशाहियत मौजूद है, या डिक्टेटरशिप है, किसी न किसी फॉर्म में वहाँ पे आमराना हुकूमतें होती हैं। आमराना हुकूमतों का जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, एक पूरी दुनिया पे जो है अमेरिका का एक असर रसूख है, सवाए ईरान के जब हम बात करते हैं कि उसने अपनी पॉलिसी आज़ाद रखी हुई है, तो बाकी पूरी दुनिया जो है आप देखें उस पर अमेरिका का असर रसूख है और वो कोई भी रद्द अमल देने के लिए तैयार नहीं, और अपने अपने आवाम को उन्होंने दबा के रखा हुआ है। अब देखें ना, ज़रूरत इस बात की है कि पूरी जो इस्लामी तंजीमें, मैं समझता हूँ कि उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि तमाम ममालिक में जुम्मे के मौके पर उस पर मुजाहरे किए जाएँ, एहतजाजी रैलियाँ होनी चाहिए, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में ये सब कुछ होना चाहिए। एक आवाम को तो अपनी बताएं, मुसलमानों को भी पूरी तरह बाखबर नहीं है। आप तो आलमी बरादरी की बात करें, यहाँ तो आम इंसानों को जो मुसलमान हैं जिन मुल्कों में, उनको पता नहीं है कि बर्मा में क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, पहली तो बात यह है कि इसको अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, आवाम को तैयार करने की ज़रूरत है। आवाम हुकूमतों पर दबाव डालेंगे, आवाम हुक्मरानों पर दबाव डालेंगे तो फिर हुकूमतें जाके इस मामले की तरफ तवज्जो देंगी, वरना तो ये जो कुछ हो रहा है और ये आज का नहीं है, ये तो उन बेचारों के साथ पिछले 100 साल से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आज तो मीडिया ने इसको उठाया है और उसमें तेजी आई है, और इस वक्त जो वहाँ की सूरत हाल है कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इस पर काबू ना पाया गया, इसको रोका ना गया, तो उनकी जो जिंदगी हैं मुसलमानों की, उन पर अरसा हयात बहुत तंग हो जाएगा आने वाले वक्तों में। तो इस ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मुसलमान ममालिक, तमाम मीडिया जो है, तमाम सिविल सोसाइटी जो मुस्लिम ममालिक में काम कर रही है, या इंसानी हकूक की तंजीमें जो काम कर रही हैं, उलमा के जो फोरम है, इस्लामी राबता ग्रुप जिस आज़ाद कश्मीर पे बनाया गया है, इसी तरह का एक इस्लामी राबता ग्रुप जो है म्यांमार पे बनाया जाए, वहाँ के अवाम की भी कश्मीरियों से बदतर सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले को पहले तो अवाम तक, लोगों तक पहुँचाया जाए, उलमा और जुम्मे के खुतबों में, और इस तरह पार्लियामेंट जो है जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ इनकी रेजोल्यूशन पास की जाए, तो तब जाके उस पर एक दबाव पड़ेगा और वहाँ के मुसलमानों की जो जान माल है उसको किसी हद तक तहफ़ मिल सकेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, जनाब ये मुस्लिम दुनिया के अवाम, मुसलमान अवाम म्यांमार के मुसलमानों की सूरत हाल से कितने वाकिफ है, कितने लोग हैं जो जान
वाकिफ है? आपके अरबी प्रेस में भी कुछ ना कुछ आता रहता है, अंग्रेजी में भी छपता रहता है, हमारे यहाँ उर्दू में भी काफी छपता रहता है
जी,
लेकिन ये काफी नहीं है, सिर्फ अवाम का जानना काफी नहीं है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ हिंदुस्तान में तकरीबन 25,000 ये जो रोहिंग्या के लोग आए हुए हैं, और हम लोग उनके लिए मुस्तकिल काम कर रहे हैं, उनको 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 यानी आबाद करना, उनकी मदद करना, उनकी कानूनी मदद करना, उनके लिए मुजाहरा करना, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत बहुत महदूद है। वो ताकत जो स्टेट के पास होती है और जो स्टेट की जो पहुंच होती है वो हमारे पास नहीं है। तो अपने तौर पर हम छोटा मोटा काम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे ही यकीनन दूसरी जगह पे लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये काफी नहीं है। सिविल सोसाइटी खुसूसन हम ऐसे मुल्कों में बहुत कमजोर है, सिविल सोसाइटी यकीनन बाद मुल्कों में बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर ऐसी नहीं है। तो असल काम करने का मैंने दोबारा फिर वही अर्ज करता हूँ कि ये मुस्लिम जो हुक्मरान हैं, मुस्लिम जो हुकूमतें हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी से गाफिल हैं, बल्कि ऐसे ऐसे मसाइल वो पैदा करती हैं कि ये सब मसाइल जो असली हैं वो दब जाते हैं और दूसरे मस्नूई मसाइल जो है वो कायम हो जाते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा। और नाजरीन, हमारा राबिता दिल्ली स्टूडियो से बरकरार हो गया है, जहां मुमताज इस्लामी स्कॉलर, सियासतदान और तजिया निगार डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं, काफ़ी ताखिर से वो तशरीफ लाए हैं। बहरहाल चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, कासिम रसूल इलियास साहब।
नहीं,
कासिम रसूल इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब, बर्मी मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू हो रही है, उनके बुनियादी तरीन हकूक सल्ब कर लिए गए, शहरियत से महरूम कर दिया गया, घरों से निकाल के, शहरों से निकाल के कैंपों में रख दिया गया, اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اب ان کا نسلی تصفیہ کیا جا رہا ہے. ایک ہفتے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، 8 دن سے دوبارہ ان کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور صورتحال جو اندر کی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 9 سے زائد شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے. کرفیو کی وجہ سے میڈیا والوں کو شہر میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، وہاں پوری طرح سے فوج اور سیکیورٹی فورس کا کنٹرول ہے. صحیح صورتحال نہیں معلوم ہو پا رہی ہے، جو سرکاری اعداد و شمار حکومت کی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں وہی سامنے آ رہے ہیں. یہ جو صورتحال پائی جاتی ہے اس پر عالمی برادری خاموش ہے، بین الاقوامی ادارے خاموش ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں. تو ان سے آپ کہہ لیجئے کہ صاحب انہیں مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں. مسلم دنیا پر کیوں خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ اسلامی دنیا کیوں خاموش ہے؟
یہ صحیح ہے. دیکھیں یہی سوال جو ہے مجھے آپ سے کرنا ہے کہ آخر مسلم دنیا جو ہے اس بڑے پیمانے پہ ہیومینٹیرین کرائسس ہو رہا ہے، مسلمان جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ تقریباً نو مینس لینڈ کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت میں راکھین میں اور ارکان میں کتنے بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، بلکہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے ریفیوجیز مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں. خود ہمارے اپنے ملک کے اندر اس وقت میں مختلف شہروں میں تقریباً 10,000 جو ہے ارکانی مسلمان جو ہے روہنگا مسلمان مختلف شہروں میں آباد ہیں اور بڑی کس مرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ یو این کی جو ریفیوجی کمشنر ہے وہ انہیں ریفیوجی اسٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جب پولیس چاہتی ہے انہیں بنگلہ دیشی کہہ کے وہ کھدیڑ دیتی ہے، مختلف جگہ پہ وہ پناہ لے رہے ہیں. یہاں ریفیوجی کمشنر کے آفس کے سامنے آ کے انہوں نے دھرنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی ان کا پرسن حال نہیں ہے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو برما میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو انتہائی شرمناک ہے، انتہائی بربریت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا جو ہے اس پہ خاموش ہے، او آئی سی کچھ نہیں بول رہی ہے، عرب لیگ جو ہے وہ خاموش ہے، جبکہ عرب لیگ کا اجلاس چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ او آئی سی کو اور عرب کی مسلم حکمرانوں کو یعنی تمام مسلم دنیا کو یو این او کے اندر اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک طرح کا پریشر لائے برما کے اوپر. خاص طور سے اس بات کا امکان تو موجود ہی ہے کہ مسلم ممالک جو ہے اپنے سفرا کو اپنے امبیسڈر کو وہاں سے واپس بلا لیں تاکہ ایک طرح کا پریشر کریٹ کر سکے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت میں ان کو بالکل ہی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے میں ان کا قتل عام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کو اپنی اس بے حسی سے باہر آنا چاہیے اور ارکانی مسلمانوں کے حق میں جو ہے آواز اٹھانی چاہیے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے اگر مسلم ممالک اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آواز اٹھائیں گے تو یقیناً اس کا اثر ہوگا اور ارکانی مسلمانوں کے مسائل حل ہو سکیں گے.
جی قاسم رسول الیاس صاحب، ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر ظرف الاسلام خان صاحب سے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بہرحال اس میں جو عوام کے اندر ایک بیداری پیدا کرنے کے حوالے سے سول سوسائٹی کیا کر سکتی ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ سول سوسائٹی ہندوستان میں خاص طور پر اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دے سکے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں گزشتہ دنوں اسی میانمار کے مسئلے پر ہم نے میانمار کی ایمبیسی کے سامنے بہت زبردست مظاہرہ کیا، اور صرف یہ نہیں کہ اس میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا بلکہ جتنی یہاں دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہے، سی پی آئی ہے،
دہلی سے رابطے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے. خان صاحب، جناب اگر جتنی بھی چھوٹی موٹی جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں اور سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں، اگر یہ سب مل کر ایک مہم کے طور پر بیداری پیدا کرنے کی تحریک چلائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یہ چیز کارگر نہیں ہوگی؟
आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं?
मैं फिलहाल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं।
नहीं, हिंदुस्तान में देखिए मसला ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज इस वक्त अगर मुसलमान से मुतल्लिक होती है तो फौरन उसमें एक फिरकावारियत दाखिल हो जाती है और दूसरे लोग सिवाय लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों के तो अक्सर दूसरे लोग साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ ये मसला पैदा हो जाता है, बल्कि वो उल्टे ही उनकी मदद करेंगे ऐसे लोग जो आरएसएस ज़हनियत के रखने वाले हैं या वीएचपी वगैरह जो हिंदू ज़हनियत रखने वाले हैं, वो फौरन ही म्यांमार हुकूमत की तायद करेंगे और बल्कि ये भी कहेंगे कि आपको उनसे क्या लेना देना है, वो दूसरा मुल्क है, दूसरे मुल्क के बारे में आप क्यों बोलते हैं, ये कहेंगे। लेकिन इससे हम रुकते नहीं है, जैसे कभी डॉक्टर कासिम मसूद या साहब ने फरमाया, अभी हम लोगों ने इससे पहले मुजाहरा किया था और हम लोगों ने खुदूत लिखे, मुलाकातें भी की, अभी दूसरा भी मुजाहरा जल्दी होने वाला है, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इसमें हिंदुस्तान के तनाजुर में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो लेफ्टिस्ट हजरात हैं और सोशलिस्ट हजरात हैं, कम्युनिस्ट हजरात हैं, वो तो आते हैं हमारे साथ, लेकिन दूसरे लोग हमारे साथ नहीं आते हैं, इसलिए कि वहाँ पर हिंदुस्तान में इस वक्त फिरकावारियत जो है बहुत ही उरूज पर है और हर मसला जो है वहाँ पर इस ऐनक से देखा जाता है, कहीं इसका ताल्लुक मुसलमानों से तो नहीं, अगर मुसलमानों से है तो फिर वो मसला जो है उनके लिए घर का हो जाता है, अपना नहीं होता है। लेकिन इससे हम रुकते नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक बात की तस्दीक कर दूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त तकरीबन 25,000 हैं, 10,000 नहीं है बल्कि 25,000 बर्मी मौजूद है और वो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, खुसूसन शमाली हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं जगह जगह से, और उन्हें कुछ न कुछ मदद यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज से मिल रही है, कुछ न कुछ मदद इस माने में कि कुछ लोगों को उन्होंने कागज दे दिया है कि आप रिफ्यूजी हैं, जिसकी वजह से उनको हुकूमत के सामने और पुलिस के सामने जो है वो कागज दिखाने से कुछ राहत मिलती है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे हैं जिनको ये कागज नहीं मिला है, बल्कि बहुत से ऐसे भी हैं जो कि जेलों में पड़े हुए हैं क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, इसलिए जेलों में पड़े हुए हैं। और हम लोग उनका, मैं ज़ाती तौर से भी कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ हम केस, उनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन यकीनन ये काफ़ी नहीं है, जो ताकत चाहिए वो ताकत इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर नहीं है कि हम हुकूमत पर कोई इस तरह का बोझ डाल सकें, यानी जोर डाल सकें कि वो मुतहर्रिक हो। हुकूमत ये समझती है कि अरकान के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अहम है, अरकान से जो उसको पेट्रोल वगैरह की जो आस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अरकान माफ़ कीजिएगा यानी बर्मा जो कि इस इलाके में बहरहाल एक अहम ताकत है, और खुसूसन इसलिए भी हिंदुस्तान उसको नाराज़ नहीं करना चाहता कि बर्मा कहीं चीन के साथ न चला जाए और पूरी तरह से उसका हमनवा न हो जाए, तो ये भी चीज़ें हैं जो कि हिंदुस्तान की हुकूमत को कोई वाज मौकफ लेने में रोकती हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हुसैन साहब। जनाब पाकिस्तान में आवाम में कितनी बेदारी पाई जाती है बर्मी मुसलमानों के ताल्लुक से, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की सिविल सोसाइटीज, पाकिस्तान की इंसानी हकूक की तंजीमें, रिफाही इदारे वो क्या कर रहे हैं?
देखें जी, इसमें कोई इतनी गर्मजोशी नजर नहीं आ रही है। इस हवाले से जो इस्लामी जमातें हैं उनकी तरफ से, मिली जगजेती काउंसिल की तरफ से इनके मामलात को देखा गया है और इनके साथ, इनके लोगों के साथ बात भी की गई है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे इस तरह की कोई, जिसको आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, वो मुझे नज़र नहीं आई है। इसको मजम्मत के हवाले से कहा गया है और आलमी बरादरी पर जोर दिया गया है, हुकूमत से भी कहा गया है कि वहाँ के मुसलमानों के मामलात को की तरफ तवज्जो दी जाए, लेकिन ऐसा जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इसके लिए एक मुनज़्ज़म जो है कंपेन की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपेन कौन चलाएगा, इस सारे इशू को कौन लेकर आगे चलेगा, ये एक सवाल है जिस पे सोचने की ज़रूरत है। और इसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस्लामी OIC जो है वो एक प्लेटफॉर्म है और अगर वहाँ पे जोर दिया जाए, उसके इजलास में ये कहा जाए कि इसके लिए एक फौरी तौर पे एक राबता ग्रुप की तर्ज पे या कोई कमीशन तश्कील दिया जाए जो मुसलमान ममालिक में जाए, और इनके लिए जो फंड्स रेजिंग की भी ज़रूरत है, पूरी दुनिया में मुसलमान रह रहे हैं, अमेरिका में गालिबन 70 लाख मुसलमान हैं, पाकिस्तानी जो हैं लाखों के मौजूद हैं, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, उनसे भी फंड रेजिंग की जा सकती है। तो इन सारे लोगों की ना सिर्फ मजम्मत की जाए बल्कि इनकी फाइनेंशियल जो इनकी सूरत हाल है इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जिन मुल्कों में, थाईलैंड में मौजूद हैं, भारत में मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं वहाँ इनको सपोर्ट किया जाए, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इनकी माली सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक जब तक कोई इसको लेकर आगे नहीं चलेगा इंफरादी सतह पे मुख्तलिफ ममालिक में, अगर कोई किसी जुम्मे के इजमा में या किसी दिन कोई एक मजम्मत की जाती है, एहतजाजी मुजाहरा किया जाता है, तो मैं समझता हूँ एक किसी हद तक तो ठीक है अपने हिस्से के शमा जलाए जाते वाली बात है, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, तब उनकी जान जो है वहाँ से छूट सकेगी। छोटे मोटे मामलात से मैं नहीं समझता कि उनको कोई रिलीफ हम दे सकेंगे, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है अक़वामे मुत्तहदा में भी ये मामला उठाया जाए, जो वहाँ के जब इजलास हो तो उनको भी हो, तमाम ममालिक की तरफ से उनको खत लिखे जा सकते हैं, अपने अक़वामे मुत्तहदा के ह्यूमन राइट्स जो उनका कमीशन है उसको लिखे जा सकते हैं, इसी तरह अपने जो बड़ी ताकतें उनको भी खत लिखे जा सकते हैं कि जनाब ये सूरत हाल है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक पूरी कम्युनिटी की नस्ल कुशी की जा रही है और बेगुनाह उनका खून किया जा रहा है जो उस इलाके के रहने वाले हैं, सदियों से वहाँ पे मौजूद हैं, इसके बावजूद उनको रहने नहीं दिया जाता। आज पूरी दुनिया में 5 साल आप गुजारें तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है, एमनेस्टी मिल जाती है पूरी दुनिया, लेकिन उन लोगों के लिए मुख्तलिफ कवानीन के तहत उनकी शहरियत को ख़त्म किया गया है, उनको बेघर करने की कोशिश की जा रही है और एक मुनज़्ज़म तौर पे उनको कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को बर्मा से निकाल दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इस पे सारे मुसलमानों को ध्यान देने की ज़रूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर हुसैन साहब, और इसी के साथ हम डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल नाज़रीन आपने और कासिम रसूलुल्लाह साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि थोड़ी देर के लिए सही लेकिन उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बहरहाल बर्मी मुसलमानों पर आलमी तवज्जो की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम हुक्काम की जो गफलत है वो नाकाबिले तौजीह है, उसका कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता है। मुसलमानों के पास OIC जैसी तंजीम मौजूद है, 58 ममालिक हैं और खुदा ने इन मुस्लिम ममालिक को कुदरती और माली ज़खायर से मालामाल किया है, उन्हें अपने ये वसाइल बर्मी मुसलमानों को नजात दिलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि अभी जो अरब लीग का सरबराही इजलास हुआ है उसमें शाम के बारे में बहस हुई है, शाम में जो लोग एक कानूनी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने असलाह उठा रखा है, उसको गिराने के लिए मगरबी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उनकी माली और असलाह जाती सपोर्ट की बात की गई, लेकिन बर्मी मुसलमानों का जिक्र तक ना आया, उन पर ढाए जाने वाले मजालिम की जबानी मजम्मत से भी गुरेज किया गया है, इसका कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता है। बहरहाल लेकिन यह कि अगर अवामी सतह पर भी जो सिविल सोसाइटी है और मीडिया हैं और रफाही तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो अगर तसलसल के साथ मुजाहरे करती रहें, आवाज़ उठाती रहें, तो फिर हुकूमतें भी आवाज़ उठाने पर यकीनन मजबूर हो जाएंगी। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।